नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसानों समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि जारी की। पश्चिम बंगाल के हुगली में आयोजित कार्यक्रम में श्री मोदी ने 9 करोड़ 44 लाख किसानों के बैंक खातों में 18,880 करोड़ रुपए से अधिक की राशि डीबीटी के माध्यम से अंतरित की। बिहार के 73 लाख से अधिक किसानों के बैंक खाते में योजना की राशि अंतरित की गई है। इस अवसर पर पटना के बामेती सभागार में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए कल होने वाली नीट यूजी पुनर्परीक्षा से पहले आज राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल का आयोजन कर रहा है। परीक्षा से पहले मानक तैयारी के निरीक्षण के लिए यह अभ्यास किया गया। इस दौरान पटना में बापू परीक्षा भवन समेत राज्य के प्रमुख केंद्रों पर परीक्षा के आयोजन की तैयारियों को परखा गया। इसे लेकर यातायात व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया। नीट पुनर्परीक्षा के लिए राज्य के 34 जिलों में 331 केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा में 1,56,000 से अधिक अभ्यर्थियों के शामिल होने की संभावना है। इधर राज्य सरकार ने कदाचार मुक्त वातावरण में परीक्षा संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए हैं। परीक्षार्थियों की सुविधा के लिए राज्य सरकार की ओर से परिवहन विभाग विशेष बसों का परिचालन करेगा। साथ ही रेलवे की ओर से नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के लिए विशेष ट्रेनें भी चलाई जाएंगी। नीट यूजी पुनर्परीक्षा को लेकर पटना में कुम्हरार स्थित बापू परीक्षा भवन के आसपास विशेष यातायात व्यवस्था लागू की गई है। कई मार्गों पर वन वे ट्रैफिक लागू रहेगा। ट्रैफिक डीएसपी अनिल कुमार ने बताया कि परीक्षार्थियों को समय पर परीक्षा केंद्र तक पहुंचाने और शहर में यातायात व्यवस्था सुचारू बनाए रखने के लिए कई मार्गों पर डायवर्जन भी लागू किया जाएगा।
जो बापू परीक्षा सेंटर खास करके है, जहां पर जाम की समस्या प्राय हो जाती है, उसके मद्देनजर हम लोग कल ट्रैफिक की व्यवस्था में कुछ डायवर्जन प्लान बनाए हैं। जो धनकी की तरफ से चाहे जो पहाड़ी की तरफ से जितने पिकअप हैं, टेम्पू हैं, ई रिक्शा हैं, 8 बजे के बाद हम उसको डाइवर्ट किए हैं। अगर उनको टाउन में आना ही है तो बिस्कुमान ऊपर है, बिस्कुमान से होके जो कुम्हरार वाला पुल है उससे फिर जा सकते हैं टाउन में। जो भी बस धनकी पर आएंगे, जो गांधी सेतु की तरफ से आते हैं, चाहे जो पूर्वी दिशा से टोल प्लाजा की ओर से आते हैं, न्यू बाईपास होकर, मीठापुर होकर, गांधी मैदान, चाहे कहीं भी अन्यत्र जाना है तो जाएंगे। धनकी से या बिस्कुमान से कोई भी बस नीचे, चाहे कोई भी कॉमर्शियल गाड़ी, जब तक एग्जाम होगा उस पीरियड में जाने की अनुमति नहीं होगी।
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत बिलौटी गांव में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं। श्री चौधरी ने कहा कि इस मामले की जांच उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश द्वारा की जाएगी। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने कहा कि न्यायिक जांच का उद्देश्य घटना के सभी पहलुओं की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच सुनिश्चित करना है। गौरतलब है कि पिछले दिनों भोजपुर जिले के शाहपुर में भरत तिवारी नाम के एक व्यक्ति की कथित पुलिस मुठभेड़ के बाद मौत हो गई थी। पुलिस ने अपने बयान में मृतक युवक के आपराधिक घटनाओं में शामिल होने की बात कही थी, जिससे आक्रोशित मृतक के परिजनों ने विरोध प्रदर्शन किया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने 70वीं संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया है। इस परीक्षा में 2027 अभ्यर्थियों ने सफलता प्राप्त की है। आयोग के अध्यक्ष रवि मनुभाई परमार ने आज परीक्षा परिणाम जारी करते हुए बताया कि 593 अंक प्राप्त कर श्रद्धा पांडे टॉपर बनी हैं। वहीं 592 अंकों के साथ शशांक गौरव सेकंड टॉपर बने हैं, जबकि आयुष विजय ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है। वर्ष 2024 में आयोजित 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा के पीटी में 4 लाख से अधिक अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जनता दल यूनाइटेड की राज्य परिषद और राष्ट्रीय परिषद की बैठक कल पटना में आयोजित की जाएगी। जदयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने बताया कि बैठक में जदयू अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में पार्टी की आगामी रणनीति पर चर्चा की जाएगी। उन्होंने बताया कि बैठक में मंत्री, सभी सांसद, विधायक और एमएलसी मौजूद रहेंगे।
यहाँ जो है बिहार प्रदेश जनता दल के पहले में राष्ट्रीय परिषद का राज्य परिषद का बैठक होने जा रही है, इसको लेकर हमें काफी उत्साहित, सब हमारे पार्टी के जो भी प्रदेश के स्तर के जो भी कार्यकर्ता है नेता है, सबसे उत्साहित है। बिहार में पहली बार इसके पहले भी हुआ है, लेकिन बिहार में जो है राष्ट्रीय परिषद की बैठक हो रही है। परिषद के सभी डेलीगेट सभी प्रदेश से आ रहे हैं, उनको यहाँ गर्मजोश से स्वागत किया जाएगा।
राष्ट्रीय लोक मोर्चा की नई राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा कर दी गई है। पार्टी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने आज पार्टी पदाधिकारियों की सूची जारी की। नई कार्यकारिणी में 8 उपाध्यक्ष, 5 महासचिव और 6 सचिव बनाए गए हैं। मधुबनी से विधायक माधव आनंद को एक बार फिर प्रधान महासचिव बनाया गया है। अरविंद वाजपेयी को राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी की जिम्मेदारी दी गई है। पार्टी प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा ने सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा है कि नई टीम सामाजिक न्याय, सुशासन और विकास के एजेंडे को संकल्प के साथ आगे बढ़ाएगी। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विधानमंडल में अपने विभाग से संबंधित सवालों के जवाब देने के लिए 3 मंत्रियों को अधिकृत किया है। इनमें उप मुख्यमंत्री विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र प्रसाद यादव तथा नीतीश मिश्रा के नाम शामिल हैं। श्री चौधरी ने गृह विभाग के सवालों का जवाब देने के लिए विजय कुमार चौधरी को, कार्मिक विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय और सिविल विमानन विभाग से संबंधित सवालों का जवाब देने की जिम्मेदारी उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव को दी है। वहीं निगरानी विभाग और निर्वाचन विभाग से जुड़े सवाल, ध्यानाकर्षण सूचनाओं का जवाब नगर विकास एवं आवास मंत्री नीतीश मिश्रा देंगे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना को फॉलो कर सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कल दुनिया भर में मनाया जाएगा। 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ आयु के लिए योग। यह विषय हर उम्र में योग के महत्व को रेखांकित करता है। हमारे संवाददाता ने बताया कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर संस्कृति मंत्रालय देश भर में 100 स्थानों पर विशेष कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इनमें भारत की समृद्ध विरासत और योग परंपराओं को प्रदर्शित किया जाएगा। एक रिपोर्ट।
नई दिल्ली स्थित अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने कल मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले रन फॉर योग और एक विशेष जुम्बा सत्र का आयोजन आज किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को अपने दैनिक जीवन में योग अपनाने के लिए प्रेरित करना था। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर प्रदीप कुमार प्रजापति ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि योग केवल एक दिन मनाने की चीज नहीं है, बल्कि इसे पूरे साल नियमित रूप से करना चाहिए।
हमारे लिए ये बहुत जरूरी है कि हम 365 डेज योगा करें, और इस बार के योगा के ऊपर डिक्लेरेशन भी होने जा रहा है कि हम वर्ल्ड में कम से कम 15 से 20 मिनट अगर योग करते हैं, अपने प्राणायाम करते हैं, तो जो इस तरह की हमारे लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर्स हैं, उनको हम बहुत अच्छी की तरह से मैनेज कर सकते हैं, और ये प्रूव हो चुका है।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य राष्ट्रीय कार्यक्रम कल कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों के संयुक्त प्रयासों से इस वर्ष योग दिवस के कार्यक्रम दुनिया भर में लगभग 2500 स्थानों पर आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें 210 से अधिक भारतीय मिशन भाग ले रहे हैं। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश के जबलपुर में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगी। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कोलकाता में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होकर नेतृत्व प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने हुगली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि वे स्वयं बंगाल में योग दिवस का हिस्सा बनेंगे।
कल देश और दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी मनाया जाना है। इस बार मैं बंगाल में ही योग दिवस का हिस्सा बनूंगा। स्वामी विवेकानंद और महर्षि अरविंद जैसे योगियों की भूमि, यहाँ से जो संदेश जाएगा उससे पूरे विश्व का मार्गदर्शन होगा।
इधर प्रदेश भर में कई स्थानों पर योग शिविरों और जागरूकता कार्यक्रमों के आयोजन की तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित मुख्य समारोह में शामिल होंगे। इस अवसर पर राज्य मंत्रिमंडल के कई सदस्य भी उपस्थित रहेंगे। विभिन्न योग संस्थानों, सार्वजनिक और निजी संस्थानों, सभी सरकारी और निजी स्कूलों समेत विभिन्न स्थानों पर योगाभ्यास सत्र का आयोजन किया जाएगा। राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भागों में आंधी बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि आज राज्य के उत्तरी और दक्षिण पूर्वी भागों में कुछ स्थानों पर तेज आंधी के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने नवादा और पश्चिम चंपारण जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है।
राज्य के पूर्वी भाग के कुछ स्थानों पर जबकि शेष भागों के एक या दो स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के मध्य एवं पश्चिमी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के पूर्वी भाग के जिलों में एक दो स्थानों पर मेघ गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के नवादा एवं पश्चिम चंपारण जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
इधर राजधानी पटना समेत राज्य के दक्षिण पश्चिम भागों में भीषण गर्मी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने भभुआ, भोजपुर और बक्सर जिले में लू चलने की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। पिछले 24 घंटों के दौरान कैमूर का भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा, जहां का अधिकतम तापमान 42.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लखीसराय जिले के कवैया थाना क्षेत्र अंतर्गत संसार पोखर के पास खुदाई में मिले काले पत्थर की दुर्लभ प्रतिमा को संग्रहालय में स्थानांतरित किया गया है। जिला कला एवं संस्कृति पदाधिकारी सह सहायक संग्रहालय अध्यक्ष मृणाल रंजन को आज प्रतिमा सौंप दी गई। 2 फीट ऊंची अत्यंत प्राचीन और दुर्लभ प्रतिमा 9वीं से 12वीं शताब्दी के बीच पाल काल से जुड़ी मानी जाती है। राज्य सरकार ने क्रिकेटर मुकेश कुमार और आकाशदीप को पुलिस उपाधीक्षक यानी डीएसपी पद पर नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया है। किशनगंज जिले के ठाकुरगंज थाना क्षेत्र से पुलिस ने 157 ग्राम ब्राउन शुगर के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया। बेगूसराय जिले की पुलिस ने एफसीआई थाना क्षेत्र से छिनतई मामले में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मधुबनी जिले की एक स्थानीय अदालत ने अपनी मां की हत्या के मामले में दोषी पुत्र लाल बाबू यादव को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने 22,000 रुपए का आर्थिक दंड भी लगाया है। 18 अगस्त 2024 को हरलाखी थाना क्षेत्र में इस जघन्य हत्या को अंजाम दिया गया था। सीवान के प्रसिद्ध व्यवसायी सुनील कुमार श्रीवास्तव ब्लड डोनर क्लब के संरक्षक बने हैं। श्री श्रीवास्तव को दधीची देहदान समिति की जिला इकाई का भी संरक्षक मनोनीत किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्य के 73 लाख किसान समेत देश के 9 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त की राशि अंतरित की। प्रदेश भर के 331 केंद्रों पर कल नीट यूजी पुनर्परीक्षा का होगा आयोजन। एनटीए के निर्देश पर आज सभी केंद्रों पर हुआ मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भोजपुर के शाहपुर में 17 जून को हुई पुलिस मुठभेड़ मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए। और 70वीं बीपीएससी संयुक्त परीक्षा का परिणाम जारी। श्रद्धा पांडे बनी टॉपर, शशांक गौरव को दूसरा स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।